پہلا سلاطین چودواں باب۔ اس وقت یوربام کا بیٹا ابیا بیمار پڑا، اور یوربام نے اپنی بیوی سے کہا، ذرا اٹھ کر اپنا بھیس بدل ڈال تاکہ پہچان نہ ہو سکے کہ تو یوربام کی بیوی ہے، اور سیلا کو چلی جا، دیکھ اخیا نبی وہاں ہے جس نے میری بابت کہا تھا کہ میں اس قوم کا بادشاہ ہوں گا، اور 10 روٹیاں اور پپڑیاں اور شہد کا ایک مرتبان اپنے ساتھ لے اور اس کے پاس جا، وہ تجھے بتا دے گا کہ لڑکے کا کیا حال ہوگا۔ سو یوربام کی بیوی نے ایسا ہی کیا اور اٹھ کر سیلا کو گئی اور اخیا کے گھر پہنچی، پر اخیا کو کچھ نظر نہیں آتا تھا کیونکہ بڑھاپے کے سبب سے اس کی آنکھیں رہ گئی تھیں۔ اور خداوند نے اخیا سے کہا، دیکھ یوربام کی بیوی تجھ سے اپنے بیٹے کی بابت پوچھنے آ رہی ہے کیونکہ وہ بیمار ہے، سو تو اس سے یوں یوں کہنا، کیونکہ جب وہ اندر آئے گی تو اپنے آپ کو دوسری عورت بنائے گی، اور جیسے ہی وہ دروازہ سے اندر آئی اور اخیا نے اس کے پاؤں کی آہٹ سنی تو اس نے اس سے کہا، اے یوربام کی بیوی اندر آ، تو کیوں اپنے کو دوسری بناتی ہے؟ کیونکہ میں تو تیرے ہی پاس سخت پیغام کے ساتھ بھیجا گیا ہوں، سو جا کر یوربام سے کہہ، خداوند اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے، حالانکہ میں نے تجھے لوگوں میں سے لے کر سرفراز کیا اور اپنی قوم اسرائیل پر تجھے بادشاہ بنایا اور داؤد کے گھرانے سے سلطنت چھین لی اور تجھے دی، تو بھی تو میرے بندہ داؤد کی مانند نہ ہوا، جس نے میرے حکم مانے اور اپنے سارے دل سے میری پیروی کی، تاکہ فقط وہی کرے جو میری نظر میں ٹھیک تھا، پر تو نے ان سبوں سے جو تجھ سے پہلے ہوئے زیادہ بدی کی، اور جا کر اپنے لیے اور معبود اور ڈھالے ہوئے بت بنائے تاکہ مجھے غصہ دلائے، بلکہ تو نے مجھے اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینکا۔ اس لیے دیکھ، میں یوربام کے گھرانے پر بلا نازل کروں گا، اور یوربام کی نسل کے ہر ایک لڑکے کو، یعنی ہر ایک کو جو اسرائیل میں بند ہے، اور اس کو جو آزاد چھوٹا ہوا ہے کاٹ ڈالوں گا، اور یوربام کے گھرانے کی صفائی کروں گا جیسے کوئی گوبر کی صفائی کرتا ہو، جب تک وہ سب دور نہ ہو جائے۔ یوربام کا جو کوئی شہر میں مرے گا اسے کتے کھائیں گے، اور جو میدان میں مرے گا اسے ہوا کے پرندے چٹ کر جائیں گے، کیونکہ خداوند نے یہ فرمایا ہے۔ سو تو اٹھ اور اپنے گھر جا، اور جیسے ہی تیرا قدم شہر میں پڑے گا وہ لڑکا مر جائے گا، اور سارا اسرائیل اس کے لیے روئے گا اور اسے دفن کرے گا، کیونکہ یوربام کی اولاد میں سے فقط اسی کو قبر نصیب ہوگی، اس لیے کہ یوربام کے گھرانے میں سے اسی میں کچھ پایا گیا جو خداوند اسرائیل کے خدا کے نزدیک بھلا ہے، علاوہ اس کے خداوند اپنی طرف سے اسرائیل کے لیے ایک ایسا بادشاہ برپا کرے گا جو اسی دن یوربام کے گھرانے کو کاٹ ڈالے گا۔ لیکن کب؟ یہ ابھی ہوگا، کیونکہ خداوند اسرائیل کو ایسا مارے گا جیسے سرکنڈا پانی میں ہلایا جاتا ہے، اور وہ اسرائیل کو اس اچھے ملک میں سے جو اس نے ان کے باپ دادا کو دیا تھا اکھاڑ پھینکے گا، اور ان کو دریائے فرات کے پار پراگندا کرے گا، کیونکہ انہوں نے اپنے لیے یسرتیں بنائیں اور خداوند کو غصہ دلایا، اور وہ اسرائیل کو یوربام کے ان گناہوں کے سبب سے چھوڑ دے گا۔ जो उसने खुद किए और जिनसे उसने इसराइल से गुनाह कराया। और यरोबाम की बीवी उठकर रवाना हुई और तिर्जा में आई, और जैसे ही वो घर के आस्ताना पर पहुंची वो लड़का मर गया। और सारे इसराइल ने जैसा खुदावन ने अपने बंदा अखिया नबी की मार्फत फरमाया था उसे दफन करके उस पर नोहा किया। और यरोबाम का बाकी हाल कि वो किस तरह लड़ा और उसने क्यों कर सल्तनत की, वो इसराइल के बादशाहों की तवारीख की किताब में लिखा है। और जितनी मुद्दत तक यरोबाम ने सल्तनत की वो 22 बरस की थी। और वो अपने बाप दादा के साथ सो गया और उसका बेटा नदब उसकी जगह बादशाह हुआ। और सुलेमान का बेटा रहुबाम यहूदा में बादशाह था। रहुबाम 41 बरस का था जब वो बादशाही करने लगा, और उसने यरूशलेम यानी उस शहर में जिसे खुदावन ने बनी इसराइल के सब कबीलों में से चुना था ताकि अपना नाम वहां रखे, 17 बरस सल्तनत की। और उसकी मां का नाम नामा था जो अमोनी औरत थी। और यहूदा ने खुदावंद के हजूर बदी की, और जो गुनाह उनके बाप दादा ने किए थे उनसे भी ज्यादा उन्होंने अपने गुनाहों से जो उनसे सरजद हुए उसकी गैरत को बरीखता किया, क्योंकि उन्होंने अपने लिए हर एक ऊंचे टीले पर और हर एक हरे दरख्त के नीचे ऊंचे मुकाम और सतून और यसरतें बनाई। और उस मुल्क में लोती भी थे, वो उन कौमों के सब मकरू काम करते थे जिनको खुदावन ने बनी इसराइल के सामने से निकाल दिया था। और रहुबाम बादशाह के 5वें बरस में शाह मिस्र ससीक ने यरूशलेम पर चढ़ाई की, और उसने खुदावंद के घर के खजानों और शाही महल के खजानों को ले लिया, बल्कि उसने सब कुछ ले लिया और सोने की वो सब ढालें भी ले गया जो सुलेमान ने बनाई थीं। और रहुबाम बादशाह ने उनके बदले पीतल की ढालें बनाई और उनको महाफिज सिपाहियों के सरदारों के सपुर्द किया जो शाही महल के दरवाजा पर पहरा देते थे। और जब बादशाह खुदावंद के घर में जाता तो वो सिपाही उनको लेकर चलते और फिर उनको वापस लाकर सिपाहियों की कोठड़ी में रख देते थे। और रहुबाम का बाकी हाल और सब कुछ जो उसने किया सो किया, वो यहूदा के बादशाहों की तवारीख की किताब में लिखा नहीं है। और रहुबाम और यरोबाम में बराबर जंग रही, और रहुबाम अपने बाप दादा के साथ सो गया और दाऊद के शहर में अपने बाप दादा के साथ दफन हुआ। उसकी मां का नाम नामा था जो अमोनी औरत थी, और उसका बेटा अबियाम उसकी जगह बादशाह हुआ। पहला सलातीन 14वां बाब। उस वक्त यरोबाम का बेटा अबिय्याह बीमार पड़ा, और यरोबाम ने अपनी बीवी से कहा, जरा उठकर अपना भेष बदल डाल ताकि पहचान ना हो सके कि तू यरोबाम की बीवी है, और सैला को चली जा, देख अखिया नबी वहां है जिसने मेरी बाबत कहा था कि मैं इस कौम का बादशाह हूंगा, और 10 रोटियां और पपड़ियां और शहद का एक मर्तबान अपने साथ ले और उसके पास जा, वो तुझे बता देगा कि लड़के का क्या हाल होगा। सो यरोबाम की बीवी ने ऐसा ही किया और उठकर सैला को गई और अखिया के घर पहुंची, पर अखिया को कुछ नजर नहीं आता था क्योंकि बुढ़ापे के सबब से उसकी आंखें रह गई थीं। और खुदावन ने अखिया से कहा, देख, यरोबाम की बीवी तुझसे अपने बेटे की बाबत पूछने आ रही है, क्योंकि वो बीमार है। सो तू उससे यूं यूं कहना, क्योंकि जब वो अंदर आएगी तो अपने आप को दूसरी औरत बनाएगी, और जैसे ही वो दरवाजा से अंदर आई और अखिया ने उसके पांव की आहट सुनी, तो उसने उससे कहा, ए यरोबाम की बीवी अंदर आ, तू क्यों अपने को दूसरी बनाती है, क्योंकि मैं तो तेरे ही पास सख्त पैगाम के साथ भेजा गया हूं। सो जाकर यरोबाम से कह, खुदावंद इसराइल का खुदा यूं फरमाता है, हालांकि मैंने तुझे लोगों में से लेकर सरफराज किया और अपनी कौम इसराइल पर तुझे बादशाह बनाया और दाऊद के घराने से सल्तनत छीन ली और तुझे दी, तो भी तू मेरे बंदा दाऊद की मानिंद ना हुआ, जिसने मेरे हुक्म माने और अपने सारे दिल से मेरी पैरवी की, ताकि फक्त वही करे जो मेरी नजर में ठीक था। पर तूने उन सबों से जो तुझसे पहले हुए ज्यादा बदी की और जाकर अपने लिए और माबूद और ढाले हुए बुत बनाए, ताकि मुझे गुस्सा दिलाए, बल्कि तूने मुझे अपनी पीठ के पीछे फेंका। इसलिए देख, मैं यरोबाम के घराने पर बला नाजल करूंगा और यरोबाम की नस्ल के हर एक लड़के को, यानी हर एक को जो इसराइल में बंद है और उसको जो आजाद छूटा हुआ है, काट डालूंगा और यरोबाम के घराने की सफाई करूंगा, जैसे कोई गोबर की सफाई करता हो, जब तक वो सब दूर ना हो जाए। यरोबाम का जो कोई शहर में मरेगा उसे कुत्ते खाएंगे, और जो मैदान में मरेगा उसे हवा के परिंदे चट कर जाएंगे, क्योंकि खुदावन ने ये फरमाया है। सो तू उठ और अपने घर जा, और जैसे ही तेरा कदम शहर में पड़ेगा वो लड़का मर जाएगा, और सारा इसराइल उसके लिए रोएगा और उसे दफन करेगा, क्योंकि यरोबाम की औलाद में से फक्त उसी को कब्र नसीब होगी, इसलिए कि यरोबाम के घराने में से इसी में कुछ पाया गया जो खुदावंद इसराइल के खुदा के नजदीक भला है। इलावा इसके खुदावंद अपनी तरफ से इसराइल के लिए एक ऐसा बादशाह बरपा करेगा जो उसी दिन यरोबाम के घराने को काट डालेगा। लेकिन कब? ये अभी होगा, क्योंकि खुदावंद इसराइल को ऐसा मारेगा जैसे सरकंडा पानी में हिलाया जाता है, और वो इसराइल को इस अच्छे मुल्क में से जो उसने उनके बाप दादा को दिया था उखाड़ फेंकेगा, और उनको दरियाए फरात के पार परागंदा करेगा, क्योंकि उन्होंने अपने लिए यसरतें बनाई और खुदावंद को गुस्सा दिलाया, और वो इसराइल को यरोबाम के उन गुनाहों के सबब से छोड़ देगा जो उसने खुद किए और जिनसे उसने इसराइल से गुनाह कराया। और यरोबाम की बीवी उठकर रवाना हुई और तिर्जा में आई, और जैसे ही वो घर के आस्ताना पर पहुंची वो लड़का मर गया, और सारे इसराइल ने जैसा खुदावन ने अपने बंदा अखिया नबी की मार्फत फरमाया था उसे दफन करके उस पर नोहा किया। और यरोबाम का बाकी हाल कि वो किस तरह लड़ा और उसने क्यों कर सल्तनत की, वो इसराइल के बादशाहों की तवारीख की किताब में लिखा है। और जितनी मुद्दत तक यरोबाम ने सल्तनत की वो 22 बरस की थी, और वो अपने बाप दादा के साथ सो गया, और उसका बेटा नदब उसकी जगह बादशाह हुआ, और सुलेमान का बेटा रहुबाम यहूदा में बादशाह था, रहुबाम 41 बरस का था जब वो बादशाही करने लगा, और उसने यरूशलेम यानी उस शहर में जिसे खुदावन ने बनी इसराइल के सब कबीलों में से चुना था ताकि अपना नाम वहां रखे, 17 बरस सल्तनत की, और उसकी मां का नाम नामा था जो अमोनी औरत थी, और यहूदा ने खुदावंद के हजूर बदी की, और जो गुनाह उनके बाप दादा ने किए थे उनसे भी ज्यादा उन्होंने अपने गुनाहों से जो उनसे सरजद हुए उसकी गैरत को बरीखता किया, क्योंकि उन्होंने अपने लिए हर एक ऊंचे टीले पर और हर एक हरे दरख्त के नीचे ऊंचे मुकाम और सतून और यसरतें बनाई, और उस मुल्क में लोती भी थे, वो उन कौमों के सब मकरू काम करते थे जिनको खुदावन ने बनी इसराइल के सामने से निकाल दिया था। और रहुबाम बादशाह के 5वें बरस में शाह मिस्र ससीक ने यरूशलेम पर चढ़ाई की, और उसने खुदावंद के घर के खजानों और शाही महल के खजानों को ले लिया, बल्कि उसने सब कुछ ले लिया और सोने की वो सब ढालें भी ले गया जो सुलेमान ने बनाई थीं। और रहुबाम बादशाह ने उनके बदले पीतल की ढालें बनाई और उनको महाफिज सिपाहियों के सरदारों के सपुर्द किया जो शाही महल के दरवाजा पर पहरा देते थे। और जब बादशाह खुदावंद के घर में जाता तो वो सिपाही उनको लेकर चलते और फिर उनको वापस लाकर सिपाहियों की कोठड़ी में रख देते थे। और रहुबाम का बाकी हाल और सब कुछ जो उसने किया सो किया, वो यहूदा के बादशाहों की तवारीख की किताब में लिखा नहीं है। और रहुबाम और यरोबाम में बराबर जंग रही, और रहुबाम अपने बाप दादा के साथ सो गया, और दाऊद के शहर में अपने बाप दादा के साथ दफन हुआ। उसकी मां का नाम नामा था जो अमोनी औरत थी, और उसका बेटा अबियाम उसकी जगह बादशाह हुआ।